दिन भर तारीख 26 जुलाई दिन रविवार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी पर छिड़ी बहस, कहीं समर्थन तो कहीं विरोध।
अदालत का फैसला आएगा तो याकूब मेमन को सजा होगी, मगर ये क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो।
अफगानिस्तान में सरकारी सेना और तालिबान के बीच लड़ाई जारी, बंधक सैनिकों को तालिबान ने किया रिहा। और फैला उजियारा की तीसरी कड़ी में सुनेंगे संस्कृत वैयाकरण पाणिनि की कहानी।
आचार्य द्रोणस्तु वीराग्रगण्यः इति न कदापि विस्मर्तव्यम्। जाना सियंगराज।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी पर दिए गए ट्वीट को लेकर हंगामे के बाद अपने ट्वीट को वापस ले लिया है। शनिवार रात सलमान ने 14 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बेगुनाह की फांसी समूची इंसानियत का कत्ल है। सलमान के पिता सलीम खान, केस के सरकारी वकील और दूसरे कई लोगों ने सलमान की इसको लेकर आलोचना की और उन्हें गलत ठहराया था। याकूब मेमन को 2007 में विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। इराक की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि रमादी शहर पर कब्जा करने के अभियान में उन्हें सफलता मिल रही है। रमादी शहर पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। टीवी पर प्रसारित एक बयान में इराक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल याहिया रसूल ने कहा कि शहर के दक्षिण छोर पर यूनिवर्सिटी ऑफ अनबार के परिसर में चरमपंथ से निपटने वाले वाला दस्ता दाखिल हो गया है। उन्होंने कहा,
हम इराक के लोगों को बताना चाहते हैं कि चरमपंथ निरोधी दस्ता यूनिवर्सिटी ऑफ अनबार में घुस गया है। अब चरमपंथियों से परिसर को छुड़ाने के लिए लड़ाई जारी है। बमों को नष्ट करने और सड़कें खाली करने का काम जारी है। वे तमीम इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आपस में जुड़े 3 होटलों में विस्फोटकों से लदे बैरिकेड लगाए गए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में ऑपरेशन रूम भी बनाया है। फिर भी चरमपंथ निरोधी दस्ता और इसके जवान इनसे लड़ रहे हैं। ये थे इराक के जनरल याहिया रसूल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमरीकी दूतावास में काम करने वाले एक स्थानीय कर्मचारी की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इकबाल बेग नाम का यह व्यक्ति अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करता था। इकबाल बेग पर उसके घर के बाहर हमला किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि हमले की वजह के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इकबाल बेग अल्पसंख्यक शिया पंथ के इस्माइली समुदाय के थे। अमरीकी दूतावास से अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कीनिया की अपनी यात्रा समाप्त करते हुए कीनिया के लोगों को उनके भविष्य के लिए काम करने को कहा है। नैरोबी में स्पोर्ट्स स्टेडियम में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पूरे देश को प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने घरेलू हिंसा, जबरन शादी करने, महिलाओं के यौन अंगों के छेदन और बच्चों को स्कूल न भेजने की प्रथाओं की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। साल 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों के मुख्य अभियुक्त याकूब अब्दुल रजाक मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है। सोमवार को यानी कल उनकी दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच याकूब मेनन की फांसी की सजा पर देश भर में बहसबाजी शुरू हो गई है। पहले ऑल इंडिया मजलिसे इतिहादिल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए, तो कल देर रात फिल्म अभिनेता सलमान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा कि याकूब मेमन को नहीं बल्कि इस मामले में सजा उनके भाई टाइगर मेमन को होनी चाहिए। वहीं खबर यह भी है कि कई बुद्धिजीवियों ने भी इस बारे में राष्ट्रपति के पास एक पत्र भेजा है। इस पूरे विवाद पर सुनिए प्रगति सक्सेना की ये रिपोर्ट।
याकूब मेमन को 3 दिन बाद 30 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है। इस फैसले से पहले राष्ट्रपति के पास से भी याकूब मेमन की दया याचिका बैरंग लौट आई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इतहेदुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि याकूब को क्या इसलिए फांसी दी जा रही है कि उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं?
अदालत का फैसला आएगा तो याकूब मेमन को सजा होगी, अजमल का सबको फांसी हुई, हम कुछ बोले कानून है, मगर ये क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु के असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो ये भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते।
ओवैसी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वो इस पूरे मसले को राजनीतिक और मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा,
मजहब क्यों लेकर सवाल उठा रहे हैं? उनसे मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप वही लोग नहीं है जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? आतंकवाद का धर्म नहीं होता इसलिए ये साफ है कि आतंकवादी को किसी भी धर्म से जोड़ना उस धर्म के साथ संप्रदाय के साथ अन्याय करना होगा, जो कुछ लोग अपने राजनीति के कारण भरपूर रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं।
उधर कल देर रात फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी ट्वीट कर इस मसले पर अपनी राय पेश की तो हंगामा खड़ा हो गया। सलमान खान की ट्वीट में कहा गया है,
एक बेगुनाह को फांसी समूची इंसानियत का कत्ल है। टाइगर को फांसी पर लटकाओ, उसकी परेड कराओ, न कि उसके भाई को।
इन ट्वीट्स के बाद याकूब को फांसी देने के पक्ष और विपक्ष में, या यूं कहें कि सलमान की राय के पक्ष और विपक्ष में ट्वीट्स का तांता लग गया। और तो और, सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सलमान की बातों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी मसले की जानकारी न हो उसके विचार का कोई महत्व नहीं होता। उधर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की यूथ विंग ने सलमान खान के विरोध में आज शाम उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी कर डाला। इस बीच सलमान खान ने अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांग ली और कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ याकूब का परिवार भी अपील कर रहा है कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। मराठी मीडिया के मुताबिक फिल्म जगत और राजनीति के करीब 40 प्रतिष्ठित लोगों ने याकूब को फांसी न दिए जाने की अपील करते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इस बहस मुबाहिसे और विरोध प्रदर्शन के बीच कल सुप्रीम कोर्ट फिर याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा।
याकूब मेमन की फांसी की सजा पर बहस, ये रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। राष्ट्रपति की ओर से खारिज होने के बाद याकूब मेमन ने महाराष्ट्र के गवर्नर के पास दया याचिका भेजी, लेकिन सवाल है कि क्या गवर्नर ऐसी किसी याचिका पर विचार कर सकते हैं जिसे राष्ट्रपति ठुकरा चुके हों। साथ ही जिस संवेदनशील मामले की एक दिन बाद सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है, उस मामले में इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र और व्यक्तिगत टिप्पणियां क्या ठीक हैं? इन तमाम सवालों पर मैंने बात की कानूनी मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह से।
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बार बार इस तरह से अपील नहीं होती है, हालांकि क्यूरेटिव एक होती है जो बड़ा मुश्किल होता है रिव्यू के बाद, लेकिन ये सारी चीजें कोर्ट ने सारा सब कुछ देखने के बाद, फांसी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बारीकी से चीजों को एनालाइज करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वस्तुतः इस व्यक्ति का उसमें अपराध है कि नहीं है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतिम निर्णय ले लिया, उसके बाद कायदे से तो राष्ट्रपति और गवर्नर को भी अपनी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये पावर इसलिए दी गई थी कि कई बार टेक्निकल गलती के कारण, मान लो कोर्ट में कोई चीज जो है कुछ कंपेलिंग रीजंस अगर हों, तो वहाँ राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन होने के नाते और गवर्नर को फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होने के नाते इस तरह की आखिरी पावर दी गई है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑल दीज पावर्स, चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे वो गवर्नर है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एडवाइस के अनुसार ही यूज करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं।
कल उस पर सुनवाई होनी है इस मामले पर, उसके एक दिन पहले दो दिन पहले जिस तरह से ये कैंपेनिंग चल रही है, और यानी मामला तो अभी प्रीजुडिस ही है, उसके बावजूद उस पर इस तरह से जिस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है, ये कितना ठीक है? क्या इसको लेकर के कोर्ट कोई सख्त कदम उठा सकती है?
देखिए, ऐसा पहले ही कोर्ट के सामने आपको मालूम है आरुषि केस की जो मीडिया के ऊपर ये था आरोप की भाई जब केस चल रहा हो तो मीडिया टिका टिप्पणी ना करे, तो फ्री ओपिनियन रखना एक बात है लेकिन फ्री फ्रॉम कॉमन सेंस ओपिनियन रखना दूसरी बात है। कि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख होने की आजादी। अब सलमान खान ने ये कहा है कि नहीं, इसमें तो असली अपराधी टाइगर मैन था। कैसे पता भाई उसको, क्या आधार है, क्या ड्यू डिलीजेंस उन्होंने किया, क्या सारी इंक्वायरी कराई? यहाँ तो सारी इंक्वायरी ट्रायल कोर्ट से पहले टेस्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से हुई। अच्छा, दूसरे सलमान भाई भूल जाते हैं कि भाई धारा 120 बीबी थी, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वहाँ ये कहना इसका अपराध ज्यादा था इसका कम था तो वो नहीं चलता है।
इस मामले में केवल सलमान खान ही नहीं, जो कई लोगों ने, समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपनी राष्ट्रपति के पास एक भेजा है, कहा जा रहा है कि पत्र भेजे, जिसमें कई पूर्व जज भी हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं, फिल्म से जुड़े लोग हैं, तो इस तरह सुनवाई से एक दिन पहले इस तरह की बातें अगर आ रही हैं, और अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में फांसी पर किसी भी वजह से रोक लगा दी जाती है तो क्या ये माना जाएगा कि इस तरह का दबाव काम में आ गया? दबाव
नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कारण से अगर अपना मन बदलता है तो वही इस दबाव की वजह से नहीं बदलेगा। वो ये कि मान लो कोई ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आए और वो तथ्य भी जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन रिव्यू पुनर्विचार कर सकती है उन तथ्यों के आधार पे। लेकिन अभी तक जितना भी ये वर्ग है, जितने भी आपने बड़े बड़े नाम गिनाए, उन्होंने ऐसे कोई फैक्ट्स, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये सिद्ध हो कि याकूब भाई तो निर्दोष हैं और दोषी कोई और ही है।
फांसी की सजा के कानूनी पहलुओं के बारे में ये बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर सूरज सिंह। कार्यक्रम दिनभर आप सुन रहे हैं समीर आत्मज मिश्र से, और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में सरकारी सैनिकों और तालिबान के बीच पिछले 3 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। लड़ाई में कई सैनिकों और अफसरों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबर है कि तालिबान ने जिन 100 से ज्यादा सैनिकों को बंधक बनाया था उन्हें रिहा कर दिया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि उन्हें जमानत दी गई है। वहां ताजा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की काबुल में बीबीसी पश्तो के अपने सहयोगी सईद अनवर से।
आज जो खबरें सामने आई हैं वो ये है कि बदख्शान प्रांत के पुलिस तर्जुमान ने तस्दीक किया है कि जो पुलिस गुज़श्ता रात तालिबान के हाथ में आए थे वो दोबारा रिहा कर दिए गए हैं। लेकिन बदख्शान प्रांत के सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इन अफराद और तालिबान के दरमियान कोई डील हुआ है, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। ताहम तालिबान की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है, तालिबान ने कहा है कि इन अफराद से जमानत लेने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है और जमानत इस बात पर ली गई है कि वो दोबारा अफगान फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे।
तो क्या सरकार की ओर से भी कोई जमानत को लेकर के बयान आया है या फिर कुछ कोई डील हुई हो जो जैसा कि आप कह रहे हैं?
हुकूमत की तरफ से जो बदख्शान प्रांत के पुलिस चीफ है उनका कहना है कि ये जो लोकल पुलिस थे उनकी और इलाके में तालिबान के दरमियान कोई डील हुआ है और इसी डील के नतीजे में वो अपना वेपन तालिबान के हवाले किए हैं और सरेंडर हुए थे और उसी डील के नतीजे में ये दोबारा आज़ाद हुए हैं। लेकिन काबुल में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई रस्मी रद्दअमल सामने नहीं आया है।
सईद अनवर साहब, क्या इस तरह की भी चर्चा है कि कुछ रिहाई के बदले में कुछ पैसे दिए गए हैं या फिर जिसको कहा जाता है कि फिरौती दी गई है, इस तरह की तो कोई बात सामने नहीं आई है अभी?
रिहाई के बदले में पैसे देने की बात न तो तालिबान की जानिब से तस्दीक हुई है और न ही अफगान हुकम इसे तस्दीक कर रहे हैं और न ही बदख्शान प्रांत में जो लोकल मकामी ऑफिशल्स हैं वो भी इस बात को तस्दीक नहीं कर रहे हैं। ताहम बदख्शान प्रांत के पुलिस चीफ का कहना है कि इन लोकल पुलिस और तालिबान के दरमियान कोई डील हुआ है और उस डील के नतीजे में वो सरेंडर हुए थे।
खबर ये भी आ रही कि बदख्शान के ज्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने अपना नियंत्रण कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो अभी क्या स्थिति है?
بدخشان کے دو ضلعوں میں گزشتہ ایک سال سے کبھی کبھار لڑائی جاری ہے، اور پہلے بھی اسی ضلع میں طالبان نے ایک بار چند سیکیورٹی پوسٹ پر قبضہ کیا تھا، اور طالبان نے متعدد افغان فورسز کو وہاں ہلاک کیے تھے، کچھ فورسز کو پھر بھی قلم کر دیے گئے تھے. اس میں شک نہیں ہے کہ گزشتہ دو دن سے اسی ضلع میں لڑائی بہت تیز جاری تھا، لیکن اب اتنا بڑا لڑائی یا آپریشن وہاں بدخشان صوبے میں نہیں ہے. طالبان کا کنٹرول کچھ بہت ریموٹ ضلعوں میں ہے، وہ آ کر گوریلا حملے کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، افغان فورسز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ کنٹرول کس کا ہے تو بے شک کنٹرول افغان فورسز کے ہاتھ میں ہے.
تو افغانستان میں سرکاری سینکوں اور طالبان کے بیچ لڑائی جاری ہے. یہ تھے کابل سے بی بی سی پشتو کے سہیوگی سعید انور.
دیش دنیا کی خبریں 24 گھنٹے bbchindi.com کے ساتھ.
کارکرم میں اب وقت ہو چلا ہے ہمارے وشیش کارکرم پھیلا اجیارا کا، جس میں آپ سن رہے ہیں پروفیسر سنیل کھلنانی کی شنکھلا انکارنیشنز کا ہندی روپانتر. آج تیسری کڑی میں سنیے سنسکرت ویاکرن کے سوتردھار پاڑینی کے جیون اور ان کی وراثت کی کہانی. پرستت کرتا ہے موہن لال شرما.
کولوسوس دنیا کے بے حد شروعاتی کمپیوٹروں میں سے ایک، تب جب ڈیجیٹل کرانتی کی شروعات ہو رہی تھی. ڈیجیٹل کرانتی آج بھارت کے کونے کونے میں پہنچ گئی ہے. کولوسوس جو بھارتی سافٹ ویئر انجینئرز کی سفلتا تھی، اس میں اور 2500 سال پہلے جنمے ایک ویکتی کے وچاروں میں کیا سمانتا ہو سکتی ہے. اس ویکتی کا نام تھا پاڑینی. انہوں نے 40 پنوں کی جس اشٹادھیائی کی رچنا کی وہ اتہاس میں سب سے ادھک پورن بھاشائی تنتر ہے، جس سے ہزاروں سال پہلے سنسکرت کو ایشیا کے ادھکتر حصے میں پھلنے پھولنے میں مدد ملی. برہمن پریوار سے آنے والے پاڑنی کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان کا جنم بھارتی اپ مہادویپ کے اتر پشچم علاقے میں عیسا پورو 4th century کے آس پاس ہوا تھا. یہ جگہ افغانستان کی سیما کے پاس پیشاور کے نزدیک ہے. پاڑنی کے جیون کے بارے میں بہت ادھک اسپشٹ جانکاری نہیں ہے، لیکن ان کی کرتی اشٹادھیائی کو لے کر کوئی سندیہ نہیں ہے.
آچاریہ درونستو ویراگرگنیہ اتی نکدابی بسمرتبیم جانا شینگراج کرنا.
پاڑنی کا سارا کام سنسکرت میں ہے، جو پوتر ویدوں کی بھاشا بھی ہے. پاڑنی نے سنسکرت بھاشا کو ایسا سوروپ پردان کیا جسے موکھک روپ میں آسانی سے دھیان رکھا جا سکتا ہے.
کتمائی انگراج اتی سمبودھنا بدھیتے بھوتا انگراجم.
پاڑنی نے ایسے سنکیت وکست کیے جس سے انہوں نے سنسکرت ویاکرن کے سدھانتوں اور رچنا کو ابھیویکت کیا. اس میں کریا کے پرکاروں اور دھونیوں کے سنکشپت روپوں کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد پاڑنی نے انہیں سوتروں میں پرویا جنہوں نے سنسکرت ویاکرن کے نیم طے کیے. پاڑنی نے 4000 سوتر بنائے. ان کا اچارن لگ بھگ 2.5 گھنٹے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حال ہی میں انگریزی میں انہیں انوادت کیا گیا تو اسے لکھنے کے لیے 1300 سے ادھک پنے لگے. اس کے علاوہ پاڑنی نے ایک ایسا تنتر بھی وکست کیا جس میں گڑت کے سوالوں کو حل کرنے کے نیموں کی پرنالی تھی، جسے آج ہم کمپیوٹر کہتے ہیں. اسٹینفورڈ میں بھاشا وگیان کے پروفیسر پال کپراسے کہتے ہیں،
When I started studying generative grammar with Chomsky and Halle,
پاڑنی نے جس آدھنک وگیان کا آوشکار کیا اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں. جب میں نے 1962 میں ویاکرن کے لیے چومسکی اور ہیلے کو پڑھنا شروع کیا تب ہم بھاشاؤں کا سٹیک اور ویاپک وورن تیار کر رہے تھے، لیکن ہماری رچی خاص طور پر اس سوال میں بھی تھی کہ کیا سبھی بھاشاؤں میں سمانتا ہے اور کسی بھاشا کو کس طرح ارجت کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے ویاکرن کو گڑھنے کی کوشش کی اور تب ہمیں پتا چلا کہ पाणिनी ये काम बहुत खूबसूरती के साथ बहुत पहले कर चुके हैं। एक भाषा के आधार पर किया गया ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं।
पाणिनी की सबसे बड़ी खासियत उनकी वो काबिलियत थी जिसके बूते उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों को गागर में सागर की तरह बना दिया। लेकिन पाणिनी ने भाषा पर और उसमें भी संस्कृत पर ही इतना ध्यान क्यों दिया?
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऋग्वेद की ऋचाएं ईसा पूर्व लगभग 1500 साल पुरानी हैं। ये संस्कृत के बेहद शुरुआती ज्ञात शब्दों में शामिल हैं। संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता था। शब्दों की ध्वनियां और व्याकरण के बारे में माना जाता था कि ये जगत के सत्य को दर्शाती हैं। इस भाषा को समझना और उनका विश्लेषण अपने आप में पूरी एक दुनिया है। पाणिनी के समय संस्कृत पर ब्राह्मणों का एक अधिकार था और ये भाषा भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे ये साहित्यिक कल्पना की उड़ान की भाषा बन गई। संस्कृत के प्रसार से भारत की संस्कृति और समाज को बल मिला। अगले 1000 वर्ष में संस्कृत ने एक महाद्वीप जितने आकार में बसी आबादी तक अपनी पहुंच बना ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर शेल्डन पोलॉक कहते हैं,
The idea behind all of this is that precisely understanding human...
दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये भाषा शासन और नगरीय सभ्यता का प्रतीक बन गई। इस भाषा का सौंदर्य 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक बना रहा। भारत में रहने वाले लोगों की भाषा कंबोडिया के लोग भी समझते थे, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाया। पूरे भारत में संपर्क के लिए लोगों को एक से अधिक भाषाओं की जरूरत पड़ने लगी।
पाणिनी कीपैड के आने से भारतीय भाषाओं में शब्द आधारित संदेशों का आदान प्रदान शुरू हुआ। इनमें उन्हीं पुराने सिद्धांतों को अपनाया गया और ये 9 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती और कन्नड़ प्रमुख हैं।
Clever texting for Indian languages comes as the Panini keypad. It follows the same principles and is available in 9 Indian languages, namely Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam.
Panini keypad आधुनिक जमाने के स्मार्टफोन्स के लिए एक ऐप है, जिसने महान व्याकरणविद पाणिनी से थोड़ी सी प्रेरणा ली है। कंपनी के संस्थापक अभिजीत भट्टाचार्य इसके लिए इंटरनेट पर प्रेरणा तलाश रहे थे।
अचानक मुझे पाणिनी के बारे में पता चला और फिर मैंने उनके बारे में और अधिक पढ़ा। उन्होंने जो काम किया और उसका महत्व समझकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। कुछ लोगों को उनके बारे में बस इतना पता था कि व्याकरण से उनका नाता है, लेकिन पश्चिमी देशों में मुझे समझाना पड़ा कि सैंडविच से इसका कोई संबंध नहीं है।
पाणिनी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं। मंदिर में पूजा अर्चना या फिर कुछ कक्षाओं में ही इस तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। संस्कृत अब बौद्धिक विमर्श या चर्चाओं की भाषा नहीं रही। भारत सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रमों में संस्कृत सप्ताह मनाने की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि मोदी सरकार में कुछ मंत्रियों ने संस्कृत में शपथ ली थी, लेकिन इससे संस्कृत भाषा का कुछ भला नहीं हुआ। उपन्यासकार विक्रम चंद्रा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी रहे हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर और संस्कृत पर ग्रीक सबलाइम नाम की किताब लिखी है।
Panini is immensely important within Sanskrit, but once Sanskrit itself vanishes, as it were.
Sanskrit में Panini की अहम भूमिका है, लेकिन संस्कृत ही लुप्तप्राय हो गई और इसके साथ Panini का नाम पीछे बहुत पीछे छूटता गया। आधुनिक भाषा विज्ञान के विकास में उनकी अहम भूमिका है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो प्रोग्रामिंग की भाषाओं की वजह से जुड़ी हुई है और इस लिहाज से देखें तो इसमें Panini के विचारों का बड़ा योगदान है।
dependent on some of his insights and some of his ideas.
तो ये है पाणिनी के काम और आज की कंप्यूटर दुनिया के बीच का संबंध। समय बीतने के साथ साथ संस्कृत विद्वानों की तादाद लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सूचना तकनीक की दुनिया में सफल भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। शेल्डन पोलॉक कहते हैं,
Did the best minds go to science? Western science? Did the best minds go into business? Did the best minds go into politics?
क्या सबसे तेज दिमाग वाले लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं? विज्ञान, वो भी पश्चिमी विज्ञान। क्या सबसे तेज दिमाग वाले लोग कारोबार करते हैं? क्या प्रखर बुद्धि वाले लोग राजनीति में जाते हैं? बंगलौर में ऐसे कई बच्चे हैं जिनसे जब आप मिलते हैं तो वो कहते हैं, अरे आप संस्कृत अच्छे से जानते हैं, मेरे दादाजी को भी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इस बात से ये संकेत जरूर मिलता है कि संस्कृत की जड़ों वाले परिवारों में कुछ ऐसी खास बात जरूर थी जिससे भारत को सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बनने में मदद मिली। मुझे नहीं लगता कि ये महज संयोग है कि भारत सॉफ्टवेयर और चीन हार्डवेयर बनाता है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक खास तरह की दक्षता की जरूरत होती है जिसका संबंध संस्कृत शिक्षा से है।
संस्कृत के निरंतर पतन का एक मतलब ये भी है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ लोगों का संपर्क काफी हद तक टूटा है। देव भाषा से आम लोगों की भाषा बनी संस्कृत एक बार फिर आम लोगों से दूर हो चुकी है। 1000 साल से भी अधिक समय तक दुनिया की 1/4 आबादी की जुबान पर रही संस्कृत विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं जैसे अंग्रेजी या अरबी की तरह युद्ध या उपनिवेशीकरण के जरिए आगे नहीं बढ़ी। तो अब प्रश्न ये है कि संस्कृत की समृद्ध विरासत किस तरह से आगे बढ़ेगी।
फैलाव जियारा की इस कड़ी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं मंगलवार को विश्व भारती कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम में अंत में एक बार एक नज़र डालते हैं खेल की खबरों पर। हमारे साथ स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त। जी आदेश जी, क्या है खेल में चर्चाएं आज?
जी देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हम्बनटोटा में 5वां और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जहां आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 368 रनों जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का स्कोर 65 रन था 1 विकेट के नुकसान पर और 12वां ओवर चल रहा था। श्रीलंका की ओर से सलामी बल्लेबाज कुशल परेरा ने 116 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। उनके अलावा तिलकरत्न दिलशाद ने भी 62 रन बनाए तो कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 70 रन बनाकर नाबाद रहे। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर रशियन ओपन में अधिकतर शीर्ष खिलाड़ियों वरीयता हासिल खिलाड़ियों का ही बोलबाला रहा। पुरुष एकल वर्ग में नंबर एक वरीयता के साथ खेल रहे इंडोनेशिया के टॉमी सुग्रियार्तो ने फाइनल में इस्तोनिया के राउल मस्त को 21-16 21-10 से हराकर खिताब जीता। और इसके अलावा महिला एकल वर्ग की बात की जाए तो चेक गणराज्य की कावहेल्ड क्रिस्टीना ने जापान की मात्सुमोतो को 21-10 22-10 से 22-20 से हराकर खिताब जीता। महिला युगल वर्ग में भी शीर्ष वरीयता हासिल खिलाड़ी का बोलबाला रहा, जहां बुल्गारिया की गैब्रिला स्तोइवा और स्टेफनी स्तोइवा ने दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। और इधर पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान मिसबा उल हक ने कहा कि अगर साल के अंत में भारत के खिलाफ श्रृंखला हुई तो उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त खेल की खबरों के लिए। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक बार फिर से प्रमुख समाचार।
अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी पर किए गए ट्वीट को लेकर हंगामे के बाद अपने ट्वीट वापस ले लिए हैं। शनिवार की रात सलमान ने ट्वीट किया था कि एक बेगुनाह की फांसी समूची इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान में पुलिस ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमरीकी दूतावास में काम करने वाले एक स्थानीय कर्मचारी की बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इकबाल बेग नाम का यह व्यक्ति अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक बड़े धमाके में करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। हवाई अड्डे के पास के एक होटल जजीरा पर किए गए हमले में एक लॉरी का इस्तेमाल किया गया। तुर्की में एक कार बम धमाके में 2 सैनिकों की मौत हो गई है और 4 सैनिक घायल हो गए हैं। नाइजीरिया में दबादुर मंगलुरु शहर में बाजार में हुए एक आत्मघाती हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो कार्यक्रम दिन भर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी अब से डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। दिन भर में तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हमारे साथी राजेश चौहान।